एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में सभी सुनने वालों को बहुत स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसी असाधारण जिंदगी और किताब पर बात करने जा रहे हैं जो दिमागी प्रतिभा की ऊंचाइयों और साथ ही मानसिक संघर्ष की गहराइयों को एक साथ सामने लाती है।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिल्विया नासिल की बहुत ही प्रसिद्ध किताब ए ब्यूटीफुल माइंड।
बिल्कुल, ये कहानी है नोबेल पुरस्कार विजेता गणितज्ञ जॉन फॉर्ब्स नैश जूनियर की।
और ये कहानी आज भी उतनी ही जरूरी है मुझे लगता है।
हाँ, क्योंकि ये हमें दिखाती है कि कैसे एक जीनियस दिमाग, मतलब जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया, वो खुद सिज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी का शिकार हो सकता है।
और फिर भी ये उम्मीद और वापस की एक अविश्वसनीय कहानी भी है।
सही कहा, ये मानवीय जज्बे और सहानुभूति की ताकत की कहानी है असल में।
तो इस कमाल की किताब को लिखा किसने है? लेखिका है सिल्विया नासार।
अच्छा,
वो सिर्फ लेखिका नहीं, जानी मानी पत्रकार और अर्थशास्त्री भी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए इकोनॉमिक कॉरेस्पॉन्डेंट रह चुकी हैं।
ओह वाओ।
और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बिजनेस जर्नलिज्म की प्रोफेसर भी।
तो फिर उनकी पकड़ इस विषय पर काफी मजबूत होगी।
बिल्कुल, उनकी खासियत यही है कि वो जटिल आर्थिक या गणितीय विचारों को भी बहुत सरल और दिलचस्प कहानियों में बदल देती हैं।
हाँ, तो इस किताब के लिए तो ये एकदम सही कॉम्बिनेशन था।
एकदम, उनके पास नैश के काम जैसे गेम थ्योरी, उसको समझने की आर्थिक समझ थी, और दूसरी तरफ सैकड़ों इंटरव्यू करके कहानी कहने की वो पत्रकारीय कुशलता भी।
मतलब वो सिर्फ एक गणितज्ञ या सिर्फ एक जीवनी लिखने वाले की तरह नहीं सोच रही थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने दोनों नजरियों को मिलाया।
इसी वजह से वो जॉन नैश का एक मुकम्मल चित्र खींच पाई है ना।
बौद्धिक यात्रा उतनी ही अहम थी जितनी उसकी व्यक्तिगत लड़ाई।
तो अब जरा किताब पर आते हैं, अ ब्यूटीफुल माइंड आखिर है किस बारे में?
मूल रूप से ये जॉन नैश की जिंदगी का एक बहुत ही बारीकी से शोध किया गया और दिल को छू लेने वाला ब्यौरा है। किताब का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि असाधारण बौद्धिक उपलब्धि और गहरा मानवीय कष्ट, ये एक साथ मौजूद हो सकते हैं
और शायद अक्सर जुड़े भी होते हैं।
हाँ, अक्सर गहराई से जुड़े होते हैं। ये किताब प्रतिभा और पागलपन के बीच की वो नाजुक और कभी कभी खतरनाक सीमा को दिखाती है।
ये सवाल उठाती है कि क्या होता है जब 20वीं सदी के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों में से एक तर्कहीन मानसिक बीमारी से टूट जाता है।
बिल्कुल, और किताब सिज़ोफ्रेनिया को किसी नैतिक विफलता या सनक की तरह नहीं देखती।
हाँ, ये जरूरी है।
बल्कि एक विनाशकारी, एक मुश्किल न्यूरोलॉजिकल बीमारी के रूप में पेश करती है।
और सबसे जरूरी बात, जैसा आपने पहले कहा, ये उम्मीद और वापसी की कहानी भी है।
जी, ये दिखाती है कि दशकों की गंभीर बीमारी के बाद भी प्यार, परिवार और समुदाय के अटूट समर्थन से रिकवरी या कम से कम एक फंक्शनल जिंदगी संभव है।
तो ये सिर्फ एक जीनियस की जीवनी नहीं है?
नहीं, ये मानवीय लचीलेपन, करुणा की ताकत और मानव मन की जटिल प्रकृति का एक तरह से प्रमाण है।
चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। किताब को हिस्सों में बांटा गया है ना?
हाँ, 5 भाग है। पहला भाग एक शानदार शुरुआत, नैश के शुरुआती जीवन और एक गणितीय प्रतिभा के रूप में उनके उभरने पर फोकस करता है।
वेस्ट वर्जीनिया में उनका बचपन।
हाँ, जहाँ वो थोड़े अकेले रहने वाले, किताबों और प्रयोगों में खोए रहने वाले बच्चे थे।
अच्छा।
फिर कार्नेगी टेक और उसके बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का गणित विभाग। सोचिए, आइंस्टाइन और जॉन वॉन न्यूमन जैसे दिग्गज वहाँ थे।
वाह, जबरदस्त माहौल रहा होगा।
बहुत ज्यादा। प्रिंसटन में अपने शुरुआती 2 सालों में ही अपनी थोड़ी सामाजिक अजीबोगरीब हरकतों और अहंकार के बावजूद उन्होंने नॉन कोऑपरेटिव गेम्स पर अपनी डॉक्टरेट थीसिस के लिए बुनियादी विचार विकसित कर लिए थे।
और यहीं पर वो नैश इक्विलिब्रियम वाली बात आई।
बिल्कुल, वो क्रांतिकारी अवधारणा जिसने रणनीतिक निर्णय लेने और प्रतिस्पर्धा को समझने के लिए एक गणितीय ढांचा दिया, और इसी के लिए बाद में उन्हें नोबेल मिला।
तो ये था उनका शुरुआती दौर जब उनकी प्रतिभा चमक रही थी।
जी, दूसरा भाग अलग जीवन प्रिंसटन के बाद उनके करियर और निजी जीवन को दिखाता है।
MIT में पद मिला उन्हें।
हाँ, MIT में प्रतिष्ठित पद और रैंड कॉरपोरेशन, जो उस वक्त एक गुप्त कोल्ड वॉर थिंक टैंक था, उसके लिए सलाहकार का काम।
अच्छा, तो उनके सैद्धांतिक विचारों का असल दुनिया में इस्तेमाल हो रहा था।
हाँ, खासकर फौजी रणनीति वगैरह में। लेकिन इसी दौरान उनका निजी जीवन काफी उथल पुथल भरा था।
जैसे कि
नर्स एलिनोर स्टीयर के साथ उनका रिश्ता था, जिससे एक बेटा जॉन डेविड हुआ, जिसे नैश ने काफी हद तक नजरअंदाज किया।
ओह,
उनके कुछ गुप्त समलैंगिक संबंध भी थे जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई और रैंड से उनकी सुरक्षा मंजूरी चली गई।
ये तो काफी जटिल होता जा रहा था।
हाँ, फिर एलिसिया लार्डे एक प्रतिभाशाली फिजिक्स छात्रा से मुलाकात और 1957 में शादी। ये एक स्थिरता की उम्मीद जगाती है,
लेकिन आने वाले मनोवैज्ञानिक तूफान के ठीक पहले।
बिल्कुल, और यहीं से तीसरा भाग शुरू होता है, द ब्यूटिफुल माइंड, जो किताब का सबसे दुखद मोड़ है।
1959 में, सिर्फ 30 साल की उम्र में।
हाँ, नैश में पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया के लक्षण बिल्कुल साफ दिखने लगते हैं। उनकी विलक्षणता अब भ्रम में बदल जाती है।
उन्हें लगता था कि लालटाई वाले लोग कम्युनिस्ट साजिश का हिस्सा हैं।
जी, और अखबारों में एलियंस के गुप्त संदेश हैं जो सिर्फ वही पढ़ सकते हैं। उनका गणितीय काम भी रहस्यमय अटकलों से भर जाता है।
ये पढ़ते हुए या सुनते हुए भी बहुत तकलीफ दे लगता है।
जी,
खासकर उनकी पत्नी एलिशिया के लिए।
हाँ, लेखिका ने नैश और उनके आसपास के लोगों, खासकर उनकी गर्भवती पत्नी एलिशिया के दर्द और भ्रम का बहुत मार्मिक वर्णन किया है।
उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
हाँ, पहली बार मैकलिन अस्पताल में निदान हुआ। उस समय के जो क्रूर इलाज थे, जैसे इंसुलिन कोमा थेरेपी, उनसे भी नैश को गुजरना पड़ा। ये हिस्सा दिखाता है कि बीमारी कैसे हावी हो गई।
चौथा भाग तो और भी मुश्किल दौर के बारे में, खोए हुए साल।
जी, ये लगभग 3 दशकों को कवर करता है जब नैश की जिंदगी पर उनकी बीमारी पूरी तरह हावी थी। अस्पताल आना जाना, बौद्धिक खामोशी।
MIT से इस्तीफा दे दिया, यूरोप भाग गए।
हाँ, खुद को मसीहा समझने लगे थे। एलिसिया द्वारा वापस अमेरिका लाए जाने के बाद फिर से अस्पताल में भर्ती। 1963 में एलिसिया से तलाक भी हो गया।
बहुत मुश्किल समय रहा होगा।
बहुत ज्यादा। 1960 के दशक के अंत में वो प्रिंसटन लौटे, लेकिन प्रोफेसर के रूप में नहीं,
बल्कि फाइन हॉल के एक भूतिया साये के रूप में।
हाँ, द फैंटम ऑफ फाइन हॉल। वो ब्लैकबोर्ड पर अजीब फॉर्मूले लिखते रहते थे,
लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण दिखी 1970 में।
हाँ, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था जब एलिशिया ने तलाक के बावजूद अपने बेघर और बीमार पूर्व पति को अपने साथ एक किराएदार के रूप में रहने दिया।
ये तो वाकई कमाल की करुणा थी,
और शायद यही उनकी ठीक होने के लिए जरूरी साबित हुआ।
और यहीं से पांचवा भाग सबसे योग्य शुरू होता है, उनकी वापसी की कहानी।
जी हाँ, नैश के धीमे, चमत्कारी और काफी हद तक स्वतः ठीक होने की कहानी। 80 के दशक में दशकों की बीमारी के बाद वो भ्रम पैदा करने वाली आवाजें शांत होने लगीं।
इसके पीछे क्या वजहें थीं?
लेखिका कई चीजों का जिक्र करती हैं। एलिशिया का स्थिर समर्थन, प्रिंसटन समुदाय का वो दबाव रहित स्वीकार करने वाला माहौल, उम्र का बढ़ना और नैश का खुद का सचेत बौद्धिक प्रयास।
हाँ, उन्होंने बाद में बताया था कि उन्होंने भ्रमपूर्ण सोच को अस्वीकार करना शुरू कर दिया था,
जैसे कोई खराब डाइट को अस्वीकार करता है। बिल्कुल,
उनका दिमाग साफ होने लगा। वो धीरे धीरे गणित से जुड़े सहकर्मियों से मिले,
और फिर उनके साथियों ने गेम थ्योरी में उनके शुरुआती काम के लिए नोबेल पुरस्कार दिलाने का अभियान शुरू किया,
और आखिरकार 1994 में उन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला।
जी, ये उनकी वापसी का प्रतीक था।
उपसंहार में उनके नोबेल के बाद के जीवन, 2001 में एलिसिया से दोबारा शादी और मानसिक स्वास्थ्य की वकालत का भी जिक्र है।
हाँ, तो इस पूरी कहानी में कई गहरे विषय छिपे हुए हैं।
बिल्कुल, पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिभा और पागलपन के बीच की वो नाजुक सीमा।
हाँ, कैसे वही मानसिक गुण जो नैश की प्रतिभा को बढ़ावा देते थे, पैटर्न देखना, तीव्र ध्यान, पारंपरिक सोच की उपेक्षा करना,
शायद वही उन्हें सिज़ोफ्रेनिया के प्रति संवेदनशील भी बनाते थे।
दूसरा है मानसिक बीमारी की विनाशकारी वास्तविकता। किताब इसे बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं बनाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाती है कि ये कोई रचनात्मकता का स्रोत नहीं, बल्कि एक क्रूर बीमारी है जो पहचान, रिश्ते और काम करने की क्षमता छीन लेती है।
और ये भारत जैसे देश में और भी जरूरी हो जाता है समझना, जहां मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा कलंक आज भी बहुत ज्यादा है।
सही कहा, यहां खुली चर्चा की बहुत जरूरत है।
तीसरा महत्वपूर्ण संदेश है बिना शर्त प्यार और त्याग का, खासकर एलिसिया नैश के जरिए।
उनकी कहानी असाधारण ताकत और वफादारी का प्रमाण है। तलाक के बाद भी नैश को घर में रखना, ये उनकी जीवन को बचाने वाला कदम साबित हुआ।
ये भारतीय समाज में परिवार की, खासकर महिलाओं की देखभालकर्ता की भूमिका पर भी सोचने को मजबूर करता है ना?
बिल्कुल। चौथा है एक सहायक समुदाय की शक्ति। प्रिंसटन समुदाय ने नैश को उनके फैंटम वर्षों के दौरान चुपचाप बिना किसी निर्णय के रहने दिया।
ये दिखाता है कि कभी कभी बस एक सुरक्षित, नॉन जजमेंटल जगह देना भी उपचार में कितनी मदद कर सकता है।
और ये हमें सोचना चाहिए कि हम अपने समुदायों और काम की जगहों पर ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं उन लोगों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं।
बिल्कुल, और आखिर में छुटकारे और दूसरे मौके की संभावना।
हाँ, नैश की नोबल जीत सिर्फ एक एकेडमिक सम्मान नहीं थी, ये दुनिया द्वारा उनके मूल्य की स्वीकृति थी।
ये कहानी आशा का एक गहरा संदेश देती है कि सबसे गंभीर मानसिक बीमारी से भी वापसी संभव है।
हाँ, जीवन में बड़ी बाधाओं पर विजय पाने के लिए आशा कितनी जरूरी है।
किताब में कई ऐसे विचार हैं जो सच में सोचने पर मजबूर करते हैं।
है? जैसे नैश के बारे में प्रिंसटन में कहा जाता था, वो मानते थे कि वो बाकी सबसे इतने ज्यादा स्मार्ट है कि वो दूसरों के काम को नजरअंदाज करके गणित को खुद ही नए सिरे से बना सकते हैं।
ये उनकी मौलिकता और अकेलेपन दोनों को दिखाता है।
हाँ, एक और गहरा विचार खुद नैश का है जिसका हमने पहले जिक्र किया था। अलौकिक शक्तियों के बारे में मेरे विचार उसी तरह आए जैसे मेरे गणितीय विचार आते थे, इसलिए मैंने उन्हें गंभीरता से लिया।
ये बताता है कि उनके लिए तार्किक अंतर्दृष्टि और भ्रम के बीच अंतर करना कितना मुश्किल था,
क्योंकि दोनों एक ही खूबसूरत मन से उत्पन्न हो रहे थे।
उनके ठीक होने के बारे में भी एक विचार है जो बहुत दिलचस्प है।
हाँ, ये कोई चमत्कारी इलाज या दवा से नहीं हुआ, बल्कि एक सचेत बौद्धिक कार्य था। उन्होंने भ्रमपूर्ण आवाजों और विचारों को अस्वीकार करना शुरू कर दिया, जैसे कोई गणितीय समस्या की तर्कसंगत जांच करता है।
ये उनकी रिकवरी में उनकी अपनी भूमिका पर रोशनी डालता है।
और एक सहकर्मी का वो अवलोकन भी याद रखने लायक है। 30 साल तक वो एक भूत, एक दुखद मिथक थे। नोबेल पुरस्कार ने उन्हें सिर्फ एक अवार्ड नहीं दिया, इसने उन्हें उनकी जिंदगी वापस दे दी, इसने उन्हें फिर से वास्तविक बना दिया।
ये नोबेल के प्रतीकात्मक महत्व को कितनी खूबसूरती से बताता है।
तो इस कहानी से हम अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं, मतलब रियल लाइफ में इसके क्या मायने हैं?
मुझे लगता है सबसे पहली चीज तो मानसिक बीमारी के प्रति गहरी सहानुभूति है।
हाँ,
ये हमें बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को बेहतर समझने में मदद करती है और उस कलंक को कम करती है जो अक्सर इससे जुड़ा होता है।
दूसरा, समर्थन प्रणालियों का महत्व। एलिसिया और प्रिंसटन का उदाहरण दिखाता है कि करुणा और एक नॉन जजमेंटल स्पेस कितना शक्तिशाली हो सकता है।
और ये बात परिवारों, दोस्तों, काम की जगहों, समुदायों, हर जगह लागू होती है।
तीसरा, सफलता और लचीलेपन को शायद हमें फिर से परिभाषित करने की जरूरत है।
नैश की यात्रा सीधी नहीं थी।
हाँ, ये हमें सिखाती है कि जीवन में गिरावट अंत नहीं है और किसी का मूल्य सिर्फ चरम उत्पादकता से परिभाषित नहीं होता।
चौथा, न्यूरोडाइवर्सिटी और विलक्षणता का मूल्यांकन,
मतलब जो लोग अलग तरह से सोचते हैं उनका सम्मान करना।
हाँ, क्योंकि अलग तरह से सोचने वाले दिमाग अक्सर नई खोजों का स्रोत होते हैं। ये हमें अपरंपरागत सोच के प्रति ज्यादा सहिष्णु होने की याद दिलाता है।
और अंत में, आशा और मानवीय इच्छा शक्ति की शक्ति।
नैश की रिकवरी दिखाती है कि सही परिस्थितियों, स्थिरता, समर्थन और बेहतर होने की आंतरिक इच्छा के साथ मन ठीक हो सकता है, भले सब कुछ खोया हुआ लगे।
तो अ ब्यूटिफुल माइंड से सबसे मूल्यवान सबक शायद यही है कि इंसान सिर्फ जीनियस या सिज़ोफ्रेनिक जैसे लेबल से कहीं ज्यादा जटिल और लचीला होता है।
हाँ, जॉन नैश की कहानी मन की जटिल, सुंदर और कभी कभी भयानक जटिलता को उजागर करती है।
यह हमें उन अदृश्य स्तंभों की सराहना करना सिखाती है जो जीवन को थामे रखते हैं, किसी प्रियजन की निष्ठा, एक समुदाय की खामोश सहिष्णुता
और अपने मन को पुनः प्राप्त करने की वो अदम्य इच्छा। ये मानवीय क्षमता और कमजोरी दोनों का एक शक्तिशाली अन्वेषण है।
और ये वाकई सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे आसपास कितने ऐसे खूबसूरत मन होंगे जो अपनी चुनौतियों से जूझ रहे हैं और हम उन्हें समझने और सहारा देने के लिए क्या कर सकते हैं।
बहुत जरूरी सवाल है ये।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।